नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कहा, देहरादून में बन रहा 12 किलोमीटर लंबा 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड बाईपास का निर्माण अगले वर्ष तक पूरा होगा। सिंचाई विभाग ने उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों में जलभराव की समस्या के समाधान के लिए 1,949 करोड़ रूपये से अधिक की DPR तैयार की। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा, ग्राम स्तर पर आपदा से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग और पंचायती राज विभाग मिलकर कार्य करेंगे और रेलवे 15 जुलाई तक पहुंच बढ़ाने और भीड़भाड़ कम करने के लिए 18,000 से अधिक ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियां चलाने की योजना बना रहा है। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देहरादून शहर में यातायात दबाव कम करने और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 12 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड और 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड बाईपास के निर्माण कार्य में तेजी लाई है। यह बाईपास दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे से जुड़ते हुए शहर के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में कार्य करेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
यह परियोजना देहरादून के झाझर से शुरू होकर पांटा साहिब बल्लूपुर को जोड़ते हुए आशा रोड़ी चेक पोस्ट के पास दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे से जुड़ेगी। लगभग 716 करोड़ रुपए की लागत से विकसित हो रही इस परियोजना का करीब 44% कार्य पूरा हो चुका है और इसके अप्रैल 2027 तक पूरे होने की संभावना है। यह एक्सेस कंट्रोल राष्ट्रीय राजमार्ग ट्रांजिट ट्रैफिक को देहरादून शहर में प्रवेश के बिना ही डाइवर्ट करेगा, जिससे शहर के भीतर यातायात दबाव और वाहन प्रदूषण में कमी आएगी। साथ ही यह मार्ग सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र, विकास नगर, हरबटपुर और पांटा साहिब की ओर जाने वाले यातायात को अधिक सुगम बनाएगा। यह परियोजना हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश सहित उत्तरी राज्यों के साथ अंतरराज्यीय कनेक्टिविटी को भी मजबूत करेगी। परियोजना को दीर्घकालीन स्थिरता को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। सड़क की डिजाइन गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है, जबकि वन क्षेत्रों में प्रभाव कम करने के लिए कुछ हिस्सों में यह गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष डॉक्टर विनोद पोखरियाल।
उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों में जलभराव की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने ड्रेनेज प्लान तैयार किया है। इसके तहत सिंचाई विभाग ने 1,950 करोड़ रुपए से अधिक की DPR तैयार कर परीक्षण के बाद शासन को भेज दी है। मुख्य अभियंता संजय शुक्ला ने बताया कि रुद्रपुर शहर के लिए 786 करोड़ 13 लाख रुपए की DPR तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि शासन से स्वीकृति मिलते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देशित किया गया था कि उधम सिंह नगर, नैनीताल जिलों में जो भी हमारे शहर जल भराव से पीड़ित हैं, उनका प्राकलन बना दिया जाए और उसमें कार्य कराया जाए। तत्क्रम में हमारे सिंचाई मंडल के द्वारा अभी वर्तमान में उधम सिंह नगर में खटीमा शहर, सितारगंज, रुद्रपुर, विजयनगर, कालीनगर, धिमरी ब्लॉक जो एक क्षेत्र है, काशीपुर, ये 5 स्थानों का DPR बना दिया गया है। और साथ ही साथ नैनीताल जिले में भी जो रामनगर है और मालधन चौड़ है, थलद्वानी, इन तीनों स्थानों का भी DPR बनना है और बना भी दिया गया है, जिसमें रुद्रपुर की योजना बड़ी है, 786 करोड़ की है, जिसके प्रथम चरण में 441 करोड़ का प्रावधान किया गया है और जल्द ही इसका जीव जारी होगा और कार्य प्रारंभ हो जाएगा।
रुद्रपुर के जलभराव प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले किसान मनोज गुप्ता का कहना है कि जलभराव से उन्हें कृषि के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। उन्होंने ड्रेनेज प्लान का स्वागत करते हुए कहा कि इससे क्षेत्रवासियों को जल्द ही जलभराव से निजात मिलेगी।
इस बाढ़ से हम लोग आर्थिक रूप से जो प्रभावित तो हो ही रहे, मगर हम लोग खेती जो हमारी है वो बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पे पहुंच गए, क्योंकि जो जल भराव की समस्या है और लगातार वो बना रहता है और बरसात के दिनों में तो आमतौर पे हम कोई भी फसल और जो इस नदी के जो आसपास कॉलोनियां जो बनी है, इस नहर में जो उसका कचरा या गंदा पानी के साथ जो आ रहा है, उससे हमारी फसल प्रभावित होती है। मगर अब शासन से सुनने में आया है कि एक DPR तैयार हुई है माननीय जिलाधिकारी और सिंचाई विभाग के माध्यम से, लगभग 700 करोड़ से ऊपर की योजना है हमारे रुद्रपुर में जो जल भराव की समस्या है उसे निजात के लिए। ये बहुत अच्छी पहल है, किसान होने के नाते, किसान पुत्र होने के नाते मैं इसका स्वागत करता हूँ।
आपदा प्रबंधन और पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग और पंचायती राज विभाग मिलकर कार्य करेंगे ताकि ग्राम स्तर पर आपदा से निपटने की क्षमता को मजबूत किया जा सके और स्थानीय स्तर पर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो। इस पहल के तहत प्रथम चरण में राज्य के ग्राम प्रधानों को आपदा प्रबंधन का व्यवहारिक और आवश्यक तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। श्री कौशिक ने कहा, कल देहरादून में विभिन्न कार्यों की समीक्षा के दौरान ये जानकारी उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्राम प्रधानों को आपदा की स्थिति में फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में तैयार करना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में व्यापक स्तर पर आपदा सुरक्षित गांव विकसित किए जाएंगे जो भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ और अन्य संभावित आपदाओं का सामना करने में सक्षम हों।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार सुन रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ग्रीष्म ऋतु के दौरान चलाई जा रही अतिरिक्त रेलगाड़ियों की कल नई दिल्ली में एक बैठक में समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे 15 जुलाई तक पहुंच बढ़ाने और भीड़भाड़ कम करने के लिए 18,000 से अधिक ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियां चलाने की योजना बना रहा है। मंत्रालय ने बताया कि 11,000 से अधिक ट्रेन यात्रियों की सूचना पहले ही दी जा चुकी है। यह व्यापक संचालन, बेहतर रेल व्यवस्था, अनुकूलित समय सारणी और निरंतर निगरानी वाली एक सुनियोजित दृष्टिकोण को दर्शाती है। केंद्र सरकार पश्चिमी एशिया संकट के कारण उत्पन्न स्थिति में नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश भर में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति सामान्य और वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति लगभग 70% है।
हमारे घरेलू एलपीजी सप्लाईज नॉर्मल है। कल भी 52 लाख से अधिक घरों को एलपीजी सिलेंडर्स की सप्लाई की गई है। बुकिंग पहले से अब कम हुई है, लगभग 44 से 45 लाख के करीब प्रति रोज बुकिंग हो रही है। और जो हमारा डीएसी या डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड है उसके साथ लगभग 94% डिलीवरी की जा रही है। इसका महत्व ये है कि इससे डायवर्जन को रोकने में काफी मदद मिल रही है।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत 53 असिस्टेंट प्रोफेसर के स्थायीकरण को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय उनकी 2 वर्ष की अनिवार्य सेवा और परीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लिया गया है। स्थायीकरण की प्रक्रिया के तहत श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के 10, दून मेडिकल कॉलेज के 14, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के 19, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के 9 और हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के 1 यानी कुल 53 असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियमित किया गया है। इस निर्णय से मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक और संस्थागत ढांचे को मजबूती मिलेगी, साथ ही अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और निरंतरता में सुधार होगा। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। टिहरी और रुद्रप्रयाग में हुई सड़क दुर्घटनाओं को आज सभी समाचार पत्रों ने प्राथमिकता से पहले पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। इस खबर पर हिंदुस्तान समाचार पत्र का शीर्षक है, टिहरी और रुद्रप्रयाग में सड़क हादसों में 11 लोगों की जान गई। दैनिक जागरण लिखता है, खाई में गिरे 2 वाहन, अंत्येष्टि से लौट रहे 8 लोगों सहित 11 की मौत। प्रदेश में भवन गणना के कार्य पर दैनिक जागरण ने लिखा है, भवन गणना के लिए तैयारी पूरी, 30,000 से अधिक पर्यवेक्षक तैनात। उत्तरकाशी में स्थित मुखवा गांव में गंगा सप्तमी के उत्सव पर दैनिक जागरण की सुर्खी है, गंगा की धारा में 11,000 दीपों का दान कर मनाया गया सप्तमी पर्व। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कहा, देहरादून में बन रहा 12 किलोमीटर लंबा 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड बाईपास का निर्माण अगले वर्ष तक पूरा होगा। सिंचाई विभाग ने उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों में जल भराव की समस्या के समाधान के लिए 1,949 करोड़ रुपए से अधिक की DPR तैयार की। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा, ग्राम स्तर पर आपदा से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग और पंचायती राज विभाग मिलकर कार्य करेंगे और रेलवे 15 जुलाई तक पहुंच बढ़ाने और भीड़भाड़ कम करने के लिए 18,000 से अधिक ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियां चलाने की योजना बना रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।